परम पूज लाला जी महाराज से प्रथम भेंट तथा आध्यात्मिक शिक्षा एवं उनका प्रेम। यूं तो आपके जीवन का जब विश्लेषण करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आपका जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। आपका जन्म, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, एक सदा सुहागिन नाम के संत के आशीर्वाद से बड़ी तपस्या के बाद हुआ था और परमात्मा ने दया करके उन्हें एक पवित्र आत्मा वाली माँ की कोख से जन्म दिया, जो अत्यंत सुशील तथा ईश्वर परायण थी। और ऐसे पिता की साया भी मिली जो बहुत नेक दानी तथा हनुमान जी के परम उपासक थे। इस प्रकार जन्म से उनको परमात्मा के प्रेम की किरण ने हरारत दी थी। जब आप 8 वर्ष के थे तो परमात्मा ने दया करके एक आर्य समाजी मास्टर साहब को गांव कटिया में भेज दिया, जिन्होंने आपको सदाचारी तथा ईश्वर प्रेमी बना दिया। वैसे तो उनका असर सब पर था, पर पूज्य बाबूजी का पर विशेष पड़ा। 14 वर्ष की आयु में उस माली के कुल ने उन पर ऐसी दया की और उनके जीवन को परमार्थ के पथ पर डाल दिया और अंत तक उसमें ही समाये रहे। यह शुभ वर्ष 1915 का था जब आप परम पूज्य लाला जी महाराज साहब से मिले। यह वो मुबारक भेंट थी जिसने पूज्य बाबूजी की पूरी जिंदगी को पलट दिया, एक महान हस्ती के सुरक्षित शरण में डाल दिया, जिसने हर प्रकार से उन्हें जीवन की कठिनाइयों को झेलते झेलते परमात्मा के दर्शन करा दिए, जिसने अपने प्रथम भेंट में ही अकस्मात कह दिया कि तुम पूजा करने आए हो, बता दिया कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। संतों के साथ कई आत्माएं आती हैं जिनको देखते ही वो पहचान जाते हैं, यही बात पूज्य बाबूजी के साथ भी हुई। आपके प्रथम मिलन को पूज्य बाबूजी के शब्दों में लिखकर मैं उस प्रेम की हरारत आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं और मेरे बहनोई 6ठी क्लास में साथ साथ रहने लगे और मैं 1915 में 7वीं क्लास में पढ़ता था। वो जिंदगी का पलटने वाला माह वाला साल था, तवारीख यानी हिस्ट्री का घंटा था, उसमें हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी। प्रसंग था कि राजा जनक विदेह थे। मास्टर साहब ने विदेह शब्द के माने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लड़कों के समझ में नहीं आया। खशूशन मेरे जहां नशीन नहीं, वह माने नहीं हुए और समझ में नहीं आया। हमारी क्लास में एक साथी पंडित माता चरण जी पढ़ते थे। वे कहने लगे कि अगर इजाजत हो तो मैं लफ्ज विदेह के माने आपको समझा दूं। मास्टर साहब हंसे और बखुशी तमाम इजाजत दे दी। उसी साल अंग्रेजी जुबान के बजाय वर्नाकुलर 7वीं जमात में आया था, इसलिए बहुत से सब शब्द समझ में भी मुश्किल से आते थे। पंडित माता चरण जी, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, मुझको इस तरह समझाने लगे, विदेह उसको कहते हैं जो देहधारी तो हो और दुनिया का सब काम करता हुआ निहायत खूबी के साथ उनको अंजाम दे और फिर भी एक सेकंड के लिए भी परमात्मा या ईश्वर की याद से खाली ना हो। हर लहमा क्षण परमात्मा की याद में महव रहे और दुनिया के काम भी खराब ना होने पाए। मैं जैसा कि बयान कर चुका हूँ, आर्य समाज की ख्यालात रखता था, फौरन ही यह आलोचना करने लगा कि ऐसा तो हरगिज मुमकिन नहीं कि दुनिया के काम भी खराब ना हो और परमात्मा की याद भी हर वक्त बनी रहे। एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। पंडित माता चरण जी साहब ने ज्यादा बहस न करते हुए कहा कि साहब, हम और ज्यादा तो कुछ जानते नहीं, यहाँ भी एक साहब इसी तरह के रहते हैं जो सरकारी मुलाजमत भी करते हैं और परमात्मा की याद से एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं है। आप चाहें तो उनको देख लें और मुमकिन है तब आप मेरे जवाब से मुतमईन हो जाएं। मैंने बहुत उत्साह जाहिर किया और वादा किया कि ज़रूर शाम को वादा के मुताबिक उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। हस्व वादा शाम को गया, लेकिन जिस मकान में आप तशरीफ रखते थे उस मकान के मालिक मुंशी वहीद साहब के यहाँ मुशायरा था जिसमें आप भी बुलाए गए थे। उस रोज दूर से ही पंडित माता चरण जी ने दिखला दिया कि वो साहब हैं। चूंकि मुशायरा में देर थी, मजबूरन मैं घर वापस चला आया और अगले रोज फिर शाम को उनके कदमों के दर्शन के लिए पहुंचा। पंडित माता चरण जी ने कहा कि ये हमारी क्लास सातवीं दर्जे में पढ़ते हैं। फौरन ही आपने पूछा क्या पूजा करने आए हो। वे ऐसे प्रेम भरे अल्फाज थे कि मुझे सिर्फ ये कहते बना कि आपकी दया मुझको आपके यहाँ ले आई, वरना मैं इस काबिल कहाँ। पहले ही रोज प्रेम का सौदा हो गया और अब बराबर रोजाना सत्संग में शामिल होने लगा। वो आपका वही वक्त था जब आपने इस मिशन को फतेहगढ़ में शुरू किया था। उस वक्त हम दो चार ही आदमी थे। ये वाकया घटना अक्टूबर सन 1915 की है। इस दरमियान में जब मैं रोज आने जाने लगा तो मेरे छोटे बहनोई बाबू प्रेम नारायण जी ने मुझसे पूछा और सवाल किया कि तुम रोज शाम को कहाँ चले जाते हो। दो एक रोज तो मैं खामोश रहा। आखिरकार मुझे अपनी सफाई में बताना पड़ा कि मैं यहाँ मोहल्ला तलैया लेन में एक महात्मा जी हैं और वो गृहस्थ हैं, उनके यहाँ पूजा करने शाम को जाया करता हूँ। आपने भी फौरन जाने का इरादा कर लिया और अब हम लोग अक्सर शाम को दोनों साथ ही साथ जाने लगे। क्योंकि मेरा क्लास में अच्छे लड़कों में शुमार था, दो एक और साहब भी अच्छे थे, बख्याल कंपटीशन उनसे दोस्ती बढ़ने लगी। चुनांचे हमारे एक अति प्रिय मित्र हो गए थे बाबू जगदम्बिका प्रसाद। आप जिला हरदोई के रहने वाले थे और निहायत ही सज्जन थे। हम लोग करीब 4 साल तक बोर्डिंग में साथ रहे। वे भी हमारे साथ ही साथ पूजा करने लगे थे और जनाब के पास आने जाने भी लगे थे। हमारा उनका संबंध इतना घनिष्ठ था कि बोर्डिंग के सब लड़के, यहाँ तक कि बोर्डिंग के सुपरिटेंडेंट भी यही समझते थे कि हम हकीकी सगे भाई हैं। अगर एक धोती हम लोगों पर होती तो उसमें दो टुकड़े करके एक वो पहनते और एक मैं। दो तीन वाकयात आपके और मेरे साथ गुजरे हुए काबिले बयान हैं। एक रोज जब मैं और बाबू जगदम्बिका प्रसाद हजरत किबला लाला जी महाराज के दरबार में जा रहे थे, रास्ते में आपने मुझसे कहा कि यहाँ नजदीक ही हमारे रिश्ते के एक चाचा रहते हैं, आप इजाजत दे तो मैं उनके यहाँ होता हुआ श्रीमान लाला जी महाराज के पास पहुँचता हूँ। आप सीधे लाला जी महाराज के पास पहुँचे। आपने ये भी कहा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सकेगा उतना जल्द पहुँचूंगा। हम लोग पूजा को बैठ चुके थे, आप भी पहुँच गए। काफी देर तक पूजा होती रही। आपका कतई पूजा में मन नहीं लगा और आप काफी कोशिश करने पर भी आप हजरत किबला लाला जी महाराज से इस अमर की शाकी हुए कि आज काफी कोशिश करने पर भी मेरा मन पूजा में नहीं लगा। आपने पंडित माता चरण से इशारा किया कि तुम इनको पूजा कराओ और आप अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद आप अंदर से वापस तशरीफ लाए, पूछा कि अब तबीयत पूजा में लगी। कहा हाँ, अब तबीयत शांत है, मन भी एकाग्र है। आपने फरमाया
कि उस वक्त तक उनकी हस्ती काम पर और उस पर वातावरण का सब उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि तुम डॉक्टर श्यामलाल को क्यों लगे। तो जब भी गुरु ऐसा आदेश देता है वो शख्स अपनी हस्ती को मिटा के उन्हें इंतकाल में बैठ और तभी लोगों का, तो जब उनकी हस्ती मिट गई और वो लाला जी महाराज साहब के ख्याल में हो गए तो मन भी शांत हो गया और पुण्य अलग बैठ के उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जब भी ईश्वर ऐसी हस्तियों को भेजता है उनमें कोई न कोई ऐसी विशेषता छोड़ देता है जिससे लोग धीरे धीरे उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। परम पूज्य लाल जी महाराज साहब जो कि हम लोग के संत मत के अधिष्ठाता है, आपका भी जन्म बड़े रहीस खानदान में, वक्त वो था जब ज्यादातर कायस्थ लोग मीट मछली का प्रयोग करते थे और सब चाल चलन के खराब थे। ज्यादातर हर एक के घर के सामने एक क्रॉस का घर आपको दिखाई पड़ता। उसी वातावरण में लाला जी महाराज साहब की पैदाइश की। आपके पिताजी भी वास मछली का भी प्रयोग करते थे और उनके यहां भी प्रोसेस आते थे। उस वातावरण में रह के आपने इस विद्या को ग्रहण किया और उस वातावरण से सक्षम क्या था कि आपकी मां जो थी वो बड़ी अच्छे विचार वाली थी, रामायण की बड़ी अच्छी भक्त थी और आपने अपने पति से टोटल अलहदगी हासिल कर और यही वजह थी उस वातावरण में 7 साल रहने पर भी आप और आपके छोटे भाई चाचा जी महाराज साहब थे उस वातावरण पर अब कोई असर। बेसिस ये है कि अगर आपके साथ ईश्वर का नाम हो, जरिया कोई हो, उसके सामने बुराई टिकी नहीं सकती, उसके सामने बुराई टिकी नहीं सकती। बशर्ते कोई ऐसा शख्स हो जो आपको बराबर उस वातावरण से अलग है और वो आपकी मां थी। ये ईश्वर की देन थी, सबके साथ नहीं है ऐसा। ईश्वर से उनको अपना काम लेना था, लिहाजा उनने वो शक्ति उनको दी कि उस वातावरण के लिए हमेशा के लिए वो उससे वंचित रहे। कोई नहीं, उनके शिष्यों में से उस वक्त के लोगों में 80% कायस्थ थे। जो लाएगा उन्हीं को तो वो शिष्य बनाएंगे, बचे हुए ब्राह्मणों की तलाश में वो हमेशा रहते थे। ब्राह्मण थे जैसे प्यारे लाल जी थे, बस ये लोग सबका ये प्रभाव पड़ा कि हमने अपने जीवन काल में अपने घर में किसी को शराब पीते नहीं देखा, लेकिन हमारे जो मदन भाई साहब थे इनकी शादी में सबसे पहली शादी थी, घर के ही एल्डेस्ट थे, रंडिया गए। बाबूजी ने साफ मने कर दिया, बाबा ने हमारे लिख के भेजा कि हमारा आदेश है तुमको शादी माना। बाबू जी गए शादी में, किसी उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं किया। बाबा को मानते बहुत थे, प्रेम भी था, बड़े दुखी हुए। पूछा उनने, उनने कहा हम इसलिए नहीं कि हमारे लाला जी महाराज साहब को ये पसंद नहीं, और अब के हमने आपका हुक्म मान लिया, हमें मजबूर मत करिए कि हम आगे जाके आपके हुक्म को लें। और उसके बाद सैकड़ों शादी हुई किसी, ये आपका असर, ये आपका असर था। पहले उनने स्वयं उस वातावरण से अपने को अलग करके देखा। तो जब भी ईश्वर को जिन हस्तियों से काम लेना होता है, उनमें कोई ना कोई चीज ऐसी जो कि आने वाले लोगों के से विपरीत होती है, जिसकी वजह से वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं। कितनी बड़ी क्रेडिट की बात, 7 साल बचपन के, जबकि बच्चा सबसे अच्छा लर्नर होता है, वो कोशिश करता हर चीज की नकल करने की। और कितना क्रेडिट उनकी माँ को है तो उनको उस वातावरण से दोनों भाइयों को बचा, जिसको उनने जीवन भर निभाया। और जो लोग उनके साथ रहे उनमें से किसी के यहाँ भी शराब नशे या प्रोसेस के जाने की प्रथा कभी नहीं हुई। आपका जन्म 2 फरवरी 1875 में फरुखाबाद में हुआ। बेसिकली आपका परिवार भोगाओं का रहने वाला। आपका निर्माण 14 अगस्त को एक और देव के बीच में रात के वक्त फतेहगढ़ में इसी मकान में जो आप देखते हैं उसमें। आप ही ने इस मत की शुरुआत की और बड़े थोड़े से आदमी थे, उन थोड़े से आदमियों में से कुछ लोगों ने जो उनका कहना माना, उनके बताए हुए असूलों पर चले, उनने आज पूरे भारतवर्ष में बाहर भी उनके मत का। और यही सच्चाई होती है। आपका रास्ता केवल ये था प्रेम से, एब्सोल्यूट ट्रुथ, सच्चाई होनी चाहिए। आप 15 मिनट पूजा करें, लेकिन उसके साथ पूर्ण उस वक्त आपको ख्याल की धार एक ही तरफ, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ। और सिवा प्रेम को छोड़ के आपने किसी को कुछ नहीं सिखा। अक्सर आप कहते थे करना तो हमको है ना, हम कर ही रहे हैं, तुम तो आते जाते रहो, मुझे अपने समय का दान देते चले जाओ। और अपने निजबंध का दान, जिनने उनके टाइम में अपने समय का दान किया, निजबन का दान किया, उन्हीं लोगों ने इस काम को जैसे जिसने बेहतर समझा जाए। आप ईश्वर का नाम सिखाते हैं, ईश्वर आपके नाम को अमर करते हैं। और यही वजह है कि उनके गुजरे हुए इतने बरस हो गए और अब भी लोग उनको बराबर याद कर, इतने पीरियड में तो लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। सत्य ही एक कायम रहता है। और इन समारोहों का मनाने का ही मतलब ये होता है, हमारे आपके ओम शांति के या उनकी पूजा करने के वो भूखे नहीं है ना ईश्वर, हम अपने जीवन को किस तरह उन्हीं की तरह बना। वो एक आइडियल थे, कि किस तरह से हम लोग अपने जीवन को सब कठिनाइयां और उनके साथ सभी परेशानियां रहें, लेकिन कभी भी वो इस रास्ते से देखें। उनके तीन बच्चों की डेथ भी उन्हीं के सामने थी, लड़कियों की शादी में भी बड़ी कठिनाई हुई, दो बहुओं की भी डेथ उनके सामने थी। इन सबको बर्दाश्त करते हुए वो किसी क्षण भी ईश्वर के नाम से, और तभी उन्होंने कलेक्टर साहब से कहा था कि हमारा कोई समय भी खराब नहीं है, वो समय जो आप ईश्वर के नाम में व्यतीत करते हैं वही असली समय है जो आपको यूटिलाइज होगा। जितने समय हम दूसरे काम करते हैं वो दुनिया की चीजें हैं और अपना समय नष्ट कर रहे हैं, वो उन चीजों को हम नष्ट कर रहे हैं जो चीज हमारे साथ नहीं जा रही। और जो ईश्वर के समय दे रहे हैं वो उसमें दे रहे हैं जो चीज हमारे साथ जाए। जिसका पल्ला भारी होगा उधर ही ईश्वर की तराजू झुक जाए, जैसे दुनिया का कायदा। प्रेम के लिए कुछ करना नहीं है, अपने मन और बुद्धि का खाली सरेंडर करना। और जो हमारा दुनियावी प्रेम जगह जगह बटा हुआ है उस सबको एकाग्र करके गुरु को चरणों में देते चले जाते। औलाद में, पत्नी में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सोसाइटी जहां जहां बता सबको एकाग्र करिए। और यही उन्होंने एक बार ताऊजी महाराज साहब की बड़ी इच्छा हुई कि देश के लिए कुछ किया जाए। आपने लाला जी महाराज साथ छोड़ी, उनका बड़ा अच्छा ख्याल है। मेरी भी इच्छा होती है लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तुम्हारे पास इन चीजों का सोचने का समय। और जो मेरे पास समय है वो मैंने ईश्वर को दे रखा है, उस समय को मैं व्यर्थ नहीं करूंगा। यदि तुम अपना समय नष्ट करते चाहो तो मुझे इसमें कोई इतराज भी नहीं, देखिए कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहे हैं, चाहते भी नहीं है। और फिर आपने लिखा है कि वो ख्याल हमारे अंदर से बिल्कुल जाता था, तो जो भी समय हो बेटे जीवन का उसको उन्हीं के जिक्र में, उन्हीं के याद में अपने गुरु के माध्यम से बिता। तो उसको बताइए कौन सी मेहनत, ना कोई त्याग आप कर रहे हैं ना कुछ, अपने अपने ही समय का करेक्ट यूटिलाइजेशन कर। आप गंगा बेटे हमारे ख्याल में जो भी तुम डायग्नोसिस दे दोगे दुनिया कोई हस्ती चैलेंज ही नहीं करती। और ये मुझको लाला जी महाराज साहब ने बख्शिश दी जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्या होता है कि उस वक्त उनकी हस्ती काम करती, आपकी हस्ती काम। पूजा ये है कि अपनी हस्ती को मिटा दीजिए और गुरु की हस्ती को जाहिर कर। जब हर वक्त आपके साथ गुरु है तो माया कभी हम ले ही नहीं कर सकते, माया आपसे हमेशा भयभीत रहेगी और फिर वो कोऑपरेट करती है। और जब कोऑपरेट करती है तो उस आदमी की दीन और दुनिया दोनों बनते हैं। पहले दीन को बनाना होता है, दुनिया अपने आप बनती चली जाए। और जिनने दुनिया बनाने की कोशिश की वो न दीन के रहे न दुनिया। दुनिया जब किसी की है ही नहीं तो बन कैसे सकती। ये ख्वाहिश आपकी पूरी हो गई, आपको सुख मालूम हुआ, दूसरी इच्छा नहीं पूरी हुई दुख हुआ, तो इसी सुख दुख के चक्कर में पड़ा। और जब आप गुरु के उस पर रहेंगे तो आपको कोई भी किसी किस्म की दिक्कत नहीं। और यही तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, प्रवेश नगर कीजिए सब कहा जाए, हृदय राख को जब तक हृदय में आपके गुरु हैं, ईश्वर का नाम है, कोई बाल बांका नहीं। इससे सहज तरीका कलयुग में कोई भी नहीं कि जिसमें अभ्यासी को कुछ करना नहीं है, समस्त जिम्मेदारी गुरु की है जो बराबर प्रार्थना करता है, उससे प्रेम कर ले सच्चाई से और जो वो कहे उसे मानता चाहिए। जीवन सुखमय हो और यही आपने लालजी महाराज साहब ने स्वयं भी फॉलो किया, अपने शिष्यों को भी उसी गुरु में मुसलमान गुरु का धारण करना। काश वैसे भी आधे मुसलमान कहलाते। दुनिया का मुकाबला करना, लड़कियों की शादी में बड़ी बाधाएं पड़ी, लेकिन आप देखिएगा आपने लिखा है हमारी लाज हमारे गुरुदेव के हाथ में, हमसे ज्यादा वो चिंतित है। धर्म के सब असूलों को फॉलो करते हैं। कभी अभी आपने मौलवी साहब के यहाँ गाना नहीं किया और कभी मौलवी साहब ने उन्हें ऑफर नहीं, मौलवी साहब ने उनके यहाँ हाथ में खाना खाया है लेकिन बर्तन में नहीं इस्तेमाल। तो धर्म से तो ये सब चीजें बहुत ऊंची है। किसी नियम या मर्यादा को उन्होंने नहीं तोड़ा और आखिरी वक्त तक उन्हीं के बने। मौलवी साहब को भी लोगों ने बड़ा परेशान, मुसलमान फकीर सब बड़े तासुब, और इसीलिए सिलसिले में है फजल अहमद खां फकीर बेनवाज निवास, यानी इनका कहीं से भी कोई वो नहीं। उस वक्त की सोसाइटी में जब आपको फरुखाबाद भी छोड़ना पड़ा तो उन्होंने लालाजी महाराज साहब को नहीं छोड़ा। सबसे सरल तरीका इसमें अगर नहीं कर सकता, ईश्वर कितना दयालु है कि हमारी वो इच्छाएं जो कि हमें मरने के बाद सूक्ष्म रूप से पूरी हो सकती है, उनके लिए कोई जन्म नहीं देता। नहीं जाने हम कितनी इच्छाओं को ले बैठे, खाली हमारे वही भोग जो बगैर हमें स्थूल धारण करे नहीं भोग सकते, उन्हीं के लिए हमें शरीर धारण करना। तो ईश्वर से बड़ा दयालु कौन हो सकता है कि वो खुद ही नहीं जानता हम लोग इन 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसे। लेकिन ये तो आदमी अपनी एम्पायर बनाने की कोशिश करता है। जिस रोज से उसकी शादी होती है वो सोचता है मैं और मेरी दुनिया, पत्नी और बच्चे, इसके अलावा उसे किसी की चिंता नहीं, और इसी उधेड़बुन में उसका पूरा जीवन बीते जाता है। हर शख्स जानता है हमसे पहले भी ये दुनिया थी, हमारे बाद भी रहेगी, न किसी की थी न किसी की हो। दुनिया तो एक कमल के पेड़ फूल की तरह है कि हमेशा ऊपर रहता है, जड़ नीचे रहती है, पानी कीचड़ सब चीजों से उससे कोई इसी तरह आपने कहा दुनिया में रह के हर वक्त ईश्वर के ख्याल में और यही विधेय होता कि आप दुनिया के काम तो इंद्रियां करती मनोबुद्धि परमार्थ चित्त से शुरू होता कि अपने चित्त में आपके क्या है। अगर हम दुनिया का कोई काम करते हैं उसमें हमारे इंद्रियां मनोबुद्धि शामिल बुद्धि के ऊपर चित्त का मुकाम होता है जहां से ये परमार्थ जो बराबर बताते चले आ रहे हैं कि इतने हिस्से में जो दयाल देश का है चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो चोर हो डाकू हो बेईमान हो सबका एक वो एब्सोल्युटली प्योरिफाइड है आत्मा। सूक्ष्म हर मनुष्य का अलग अलग और हमारा स्थूल हमारे सूक्ष्म के हिसाब से हमसे कराता रहे। खाली हमें अपने सूक्ष्म को ठीक करना उसके देश में हम वैसे ही पहुंचे। सूक्ष्म खाली हमारे विचार हमारे विचार हुए आत्मा से उसको शक्ति मिली बुद्धि मन ने उससे अपने हिसाब से इंद्रियों से काम आपको ख्याल आया कल भूल गए थे कि लाला जी महाराज साहब के उस पर चलना इस ख्याल को आत्मा से शक्ति मिली मनोवृद्धि का हाँ भाई चलो चलना चाहिए आपके पैर और सुविधाएं आपको होती चली। ख्याल आया मन का अलकश आया कि साथ थोड़ा काम है जन्माष्टमी का त्योहार है इंद्रियों ने काम करना चाहिए चलो भाई छोड़ा फिर कभी और मौका आएगा देखा जाए। ऊपर के हिस्से का तो काम एनर्जी देना और कुछ नहीं करना वो सबका प्योरिफायर है वो आपके हर ख्याल को एनर्जी देता है। सूक्ष्म हर एक का अलग हर व्यक्ति का इस फूल यही जला दिया जाता उसका सूक्ष्म उसके कारण पर कवरिंग उनके साथ जाता है और उसी के हिसाब से हमारा अमालनामा तैयार होता है जिसको हम भोगते हैं। कोई शख्स ऐसा दुनिया में नहीं देखा होगा नहाया न होगा जिसे जीवन भर सुख रहा हो या जीवन भर दुख रहा हो सुख दुख दोनों पहलू में कभी सुख है कभी दुख है। अगर जीवन भर दुख रहता तो हो सकता है आदमी घबरा जाता जीवन भर सुख रहता तो हो सकता है उसका दिमाग और अहंकार उसका कभी खत्म ना हो। और उसका परम पूज्य लाला जी महाराज साहब ने एक पूर्ण एग्जाम्पल जिसे कहते हैं हर तरह से उनके जीवन को पढ़िए। अंग्रेज कलेक्टर थे ट्रेजरी का मालिक ही कलेक्टर होता है ट्रेजरी ऑफिसर उसके बिहाफ पर दस्तखत करता बगावत चल रही थी कंपनी वाला राज था, काफी परेशान थे। एक एसडीएम उनके उन्होंने साहब यहाँ पे उनको चौधरी साहब कहा करते थे खिताब के, उसमें चौधरी साहब हैं अपनी ट्रेजरी में जो बड़ा अच्छा भजन गाते हैं, उससे बड़ी शांति मिलती। यादव एसडीएम साहब गए, उन्होंने साहब आपको कलेक्टर साहब बुला रहे हैं। उनने कहा, उनने लालाजी महाराज साहब ने कोई भजन सुना। फिर उन्हें कोई मतलब नहीं, परेशानी हट गई। फिर कुछ दिन बाद कोई परेशानी आई, फिर आप गए, ये दुनिया का पार्ट तीस वर्ष तक जब वो आए तो उनने उनसे यही कहा, मैं कोई गवैया नहीं हूँ और न प्रोफेशनल हूँ, मैं तो इस ख्याल से कि शायद उनका ख्याल ईश्वर की तरफ हो जाए और वो असंभव है, ज्यादा मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा, माने मस पर। कितनी बड़ी चीज थी जो नौकरी से हटा सकता था, पैसे की सख्त तंगी थी। एसडीएम साहब ने कहा कि कल आपको नौकरी से निकाल दिया था, उनका हमारा सलाम कह दीजिएगा, इतना और कह दीजिएगा रोटी रोजी देने वाला ईश्वर होता है ना, तो अगर उसको ऐसे ही मंजूर होगा तो जरूर। कुछ ऐसी परेशानी हुई, डीएम साहब एसडीएम साहब उन्हीं के सब पे डाल, कितना भरोसा मालिक पर, कितना भरोसा था। जब तक दुनिया थी दुनिया निभा दी, लेकिन अपना समय को बर्बाद किया। आपका जीवन ही एक आइडियल था और वही उन्हें अपने सभी लोगों को, हर शख्स अलग अलग ग्रहण करता है, जिसकी जैसी ग्रहण शक्ति हुई उसने वैसा ग्रहण। हमने इन तीन बुजुर्गों को देखा, गुरुदेव को, भावजी को और डॉक्टर चतुर्मुख साहब। यही कह सकते हैं कि उनके आदर्शों का पालन किया हूं बहुत, और जैसा वो चाहते थे वैसे ही। उन्होंने डॉक्टर चतुर्भुज साय जी से कहा, तुम्हारा काम ये है मेरे मिशन को सब में लिटरेचर के थ्रू फैलाओ, ओनली सबसे ज्यादा लिटरेचर उनका। ताऊजी बाऊजी से कहा, मेरे मिशन को ऐसे लोगों में फैलाओ जिनसे आगे चल के ये सिलसिला चलता। हर शख्स ठाकुर साहब राम सिंह जी से कहा कि राजस्थान का इलाका रजवाड़ा ऐसी जगह है जहां कोशिश करो और जात के लोगों को भी फायदा हो, उन्हें किसी से क्या मतलब था। और ठाकुर साहब के शिष्यों में से क्योंकि वो कास्टों से तरह प्रेम करते थे लाला जी, इस वजह से जितने पुलिस डिपार्टमेंट में है उनके हाथ के अपॉइंटमेंट वो सब कास्ट। लेकिन उनके मिशन में जितने लोग आए वो और कास्ट। फिर उसको हर चीज से यूनिवर्सल प्रेम हो जाता है और वो ही कोशिश करता। हमें सबको यही कोशिश करनी थी कि उनके मिशन को जैसा वो चाहते थे पहले हम अपने को बनाएं और फिर दूसरों को भी ईश्वर के नाम का। तब तक ये है जो शख्स आपके संपर्क में आए उससे ईश्वर का नाम का जिक्र कर, जिक्र करेंगे आप गुनहगार नहीं, नहीं जिक्र करेंगे आप गुनहगार। माने न माने आपको वो हो, आपने अपनी ड्यूटी को पूरी कर दी, बात काफी मालिक पे छोड़ो। आपने हमेशा यही देखा कि हम क्या करते हैं, ये कभी नहीं देखा दूसरा क्या करता। आपने गुरुदेव से भी यही कहा कि बेटे हमेशा ये देखना तुम क्या करते, ये मत देखना दूसरा क्या करता। और तुम फलाने शख्स से मिले इसीलिए तुम्हारे विचार हमसे नहीं मिल पाए, जबकि तुमको आते हुए अब इतने दिन हो गए। तो हमेशा आदमी को ये देखना चाहिए हम क्या करते हैं और हम क्या कर सकते। दूसरे के तो आप ठेकेदार हैं नहीं, कोशिश बराबर कर, कोशिश बराबर करते रहिए, जितने का भला हो जाए वही अच्छा। आपकी आयु 60 साल पूरी नहीं हुई थी, 59 कुछ बंद कह सकते हैं। तो ईश्वर ने आपको समय भी ज्यादा नहीं दिया, ले उतने ही समय में, जैसे लोग कहते हैं साहब समय नहीं है, उतने ही समय में वो ये कर गए कि आज समस्त जगह लोग उनको याद कर। तो कम से कम हमारा सबका धर्म यही है और असली श्रद्धांजलि भी यही है कि किस तरह से हम अपने जीवन में उन्हीं की तरह हो जाए, उनके बताए हुए असूलों पर चल के अपने गुरु का सहारा लेके उन्हीं की तरह। कोई ऐसा काम न करें जिससे हम उनके नारगादी के कारण हो, ऐसा काम करें जिससे हम हमेशा उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु शरीर से नहीं रहता, आत्मा उसकी हर वक्त जिस जिस का उसने हाथ पकड़ा है उनके साथ रहे, हर वक्त उनकी निगरानी करती रहती और उनको गाइड करती रहती। हर शख्स देखिएगा शुरू में जो भी होगा गलती करेगा, कहीं से एक हल्की सी आवाज होगी ये गलत हो, फिर मन और बुद्धि हावी हो जाते हैं और हमसे गलती कर। तो इसी मन को दूसरे को दे दी। और इसीलिए अष्टावक्र जी ने जनक जी से निज मन का दान मांगा, जब तक ये आपके पास है तब तक आपको हमें से मनुष्य भरे हो, हमारे जितने साल हैं वो सब बीज रूपी उसमें सूक्ष्म में बचे रहते हैं। और जब आपका सूक्ष्म साफ होता है तो फिर एक पड़ता है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार हमला कर, और तब जाके अहंकार का खत्म। पहले स्थूल से सब चीजें छूटती हैं, फिर सूक्ष्म से छूटती हैं। अभ्यासी को कभी परेशान नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं साहब जिस बातों का मैं कोई कंसर्न नहीं बहुत, लेकिन वो आपके उसमें सूक्ष्म रूप में थी, वहां से बाहर निकल जाएंगे और उनको निकल जाने दी। अपनी बुराई की किसी के भलाई करना ज्यादा अच्छा है, ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि बुराइयों को छोड़ते चले जाइए, दूसरे की भलाई करते रहिए, एक दिन आपके दिमाग में भलाई भलाई रह जाएगी, बुराइयां सब निकल जाएगी। तो ये रास्ता बहुत आसान है। कर्ता कभी मत समझ, कर्ता हमेशा अपने गुरु को या मालिक को समझ कि उसकी दया की ये काम हो गया। लाइफ हिस्ट्री किसी के पढ़ लीजिए, कोई हर्जा नहीं। फिलॉसफी किसी की मत पढ़िए, एक एक सब्जेक्ट पर लोगों ने पूरी किताबें लिखी और समय नष्ट किया जिसका कोई वो नहीं है। जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक आपको उसका अनुभव ही नहीं। वही करते चले जाइए जो और लोग इस रास्ते के किया, आप देखेंगे आखिर में के सब रास्ते एक हैं, सबके असूल एक हैं, लोगों को पढ़ाने का ढंग अलग अलग है, पढ़ने का ढंग अलग अलग, बात बाकी कहीं कोई फर्क नहीं। और यही परम पूज्य लाल जी महाराज ने सबसे सरल तरीका ये बताया कि जहां सब खत्म करते हैं वहां से हम शुरू करते हैं। ईश्वरी गुरु में दया सबसे पहले, फिर दान है, फिर दीनता है, फिर क्षमा है, फिर सच्चाई है, फिर प्रेम। एंड जो है वो सच्चाई। तो आप प्रेम से शुरू करते थे कि भाई उसमें बिल्कुल सच्चे बने रहो, और तभी आपने लिखा है कि जहां सब खत्म करते हैं वहां से हम शुरू करते हैं, इसीलिए हमारा सिलसिला हमारी मंजिल वहां है जहां हमारी इच्छाओं की जेब खाली। जब आपको कोई इच्छा नहीं, जो भी इच्छा हो धर्म शास्त्र के हिसाब से उसे पूरी करने में कोई गुण नहीं, लेकिन ये ख्याल करना है कि हमें इच्छाओं का भी दमन करना है। ऐसा ना हो एक पूरी हो जाए दूसरी उठा ले, फिर तीसरी उठा ले और उसी में समय बीत जाए। समय का भी घोड़ा फिक्स्ड है और बड़ी तेजी से भागता है। और जब आप ड्यूटी समझ के करते रहेंगे तो कभी आपको अहंकार नहीं होगा। और
और पूछा कि अब तबीयत पूजा में लगी? कहा, हाँ अब तबीयत शांत है, मन भी एकाग्र है। आपने फरमाया हर जगह खाना नहीं खाते हैं, आज तुमने कहीं और खाना खाया था क्या? आपने कहा हाँ, अभी एक गैर जगह कुछ नाश्ता किया था। फिर कहा हर जगह खाना ना खाया करो, इसका बहुत बुरा असर होता है। वहाँ से हम लोग रवाना हो गए और रास्ते में मैंने हंसी से कहा कि तुम हमको छोड़कर खाना खाया, अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया वरना मेरी भी यही हालत होती। उस वो कहीं से काफ़ी मिठाई लाई थी और उसको मैंने खाया था, उसका ही असर हुआ कि मेरा मन बहुत चलायमान हो गया। ख्याल फरमाइए कि हजरत किबला लाला जी महाराज का कष्ट कितना ऊंचा था कि सामने आते ही आपने जांच कर ली कि खाना धोखे का था। यह सिलसिला पूजा और पढ़ाई का फतेहगढ़ शरीफ में सन 1915 से 1919 तक चलता रहा। इस दरमियान में एक मर्तबा बाबू जमदिंद्रा का प्रसाद जी को बहुत तेज बुखार चढ़ गया और सुबह इम्तहान था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जनाब लाला जी साहब के पास जाइए और मेरी हालत बयान कर दीजिए। मैं आप जनाब के पास फौरन गया और बड़ी आजीजी से उनका हाल कहा। दिल में बड़ी ख्वाहिश थी कि आप दया कर दें। आपने पानी पढ़कर दे दिया, पानी की दो खुराक देते ही बुखार फौरन उतर गया। इन सालों में हालत यह थी कि हम लोग आपको लाला जी महाराज को पिता तथा पूज्य जी जी माता जी को माँ का दर्जा दे चुके थे। ऐसा लगता था कि यही हमारे सब हैं, दुनिया में इनके बराबर कोई नहीं। आप भी हम सब लोगों से बड़ी शफक्कत से पेश आते और जहाँ कहीं मेला वगैरह होता था तो आप हम सबको ले जाते थे और दो दो पैसा मेले में कुछ चीज खाने को देते थे। ऐसी शफक्कत का वक्त खुशकिस्मती से ही मिल सकता था, या तो हमारे कुछ पुराने संस्कार ऐसे थे जिसने हमें ऐसे बुजुर्ग के कदमों में हाजिर कर दिया था। आज भी आपकी शफक्कत दया कृपा से सराबोर हूँ। न जाने वो कौन सी चीज थी जिसको देख आप इस नाचीज पर इतने मेहरबान हो गए थे। सन 1919 का एक वाक्या है कि मैं ढाई के मेले में, जो कि जिला शाहजहांपुर में है, गया था, जो कि फतेहगढ़ को शमशाबाद होकर रास्ता था और नजदीक था। मैं ढाई के मेले से सीधा पैदल
हम जा चुके हैं। इतने तरह रेत में पैर रेड़ लाते और गर्मी का दिन होगा तो आप सोचो कितनी तकलीफ होगी। यानी नॉर्मल चलने में हमने बाबा से कहा आपके साथ हम कभी इस मेले में नहीं आए। इतना रेत था उसमें पैदल चले।
मैं ढाई के मेले से सीधा पैदल चल दिया। शमशाबाद के स्टेशन तक पहुंचने पर उस धूप की गर्मी ने मुझे इस कदर खून के दस्त होने लगे और मेरी हालत अजीब हो गई। दस्तों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई और कुछ होश नहीं रहा, सारे कपड़े खराब हो गए। जब फतेहगढ़ स्टेशन पहुंचा तो ये ख्याल हुआ कि आपके पास ऐसे नापाक कपड़ों में किस तरह जाऊँ। हालांकि हालत अजीब थी और कमजोरी अजहद थी, फिर भी हिम्मत करके नहाया और किस कदर कपड़े बदले ताकि वे नापाक कपड़े मेरे जिस्म पर न रहे। और आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन से हाथ के मकान पर पहुंचा, पैरों का छूना था कि ये मालूम हुआ कि मुझमें तो मालूम नहीं कितनी ताकत आ गई और मुझे कोई तकलीफ नहीं। मुझसे पूछा कि इस धूप में किस तरह ढाई से पैदल चलकर शमशाबाद स्टेशन तक पहुंचे। मैंने सर नीचा कर लिया और कुछ न बोल सका। एक अजब प्रेम का दरिया बहता था जब कभी आप कुछ बोल भी देते थे। प्रेम से भरी बातें अब कहाँ, वो प्रेम की मुजस्सिम मूर्ति। अब कहाँ, जो देखा था सो पाप था, जो सुना सो अफसाना। फतेहगढ़ में सन 1915 से 1919 तक सत्संग बहुत जोर पकड़ गया। इधर हजरत किबला लाला जी महाराज का प्रेम, उधर हजरत किबला चाचा जी महाराज की बख्शिश और रहमत हम सब के ऊपर अजीब असर डाल रही थी। शाम के सत्संग में अक्सर हजरत किबला चाचा जी महाराज का आना जाना उस वक्त काफी हो गया था। वो जमाना आपका वो था जब प्रभु के प्रेम के विरह की आग में आप जलते थे और आपको तन बदन का होश नहीं रहता था। रातों सोहबत का असर रहता और अक्सर सारी रात महफिल जमी रहती थी। अजीब राम रघुवर की जोड़ी थी। सिर्फ इतना ही लिखना काफी है कि जिसने वह वक्त देखा है आसानी से दूसरी सोहबत को कबूल नहीं कर सकता, सिवाय परमात्मा के नाम के, जिक्र के और उसी के ख्याल में सत्संग तथा सत्संगियों का आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम देखकर लोग दंग रह जाते थे। और ऐसा क्यों ना होता, हजरत किबला चाचा जी महाराज दोनों खुद प्रेम की सच्ची मूर्ति थे, अदब की किताब थे, बख्शिश का दरिया हर वक्त खुला हुआ था। लुत्फ ये था कि दीन और दुनिया दोनों ही लुटा रहे थे। अगर दुनियावी जरूरत होती तो गायबाना मदद बख्शते और कहते, भाई तुम्हारे हालात वाकई ऐसे हैं कि तुम्हारी मदद की जाए, तुमको इसकी जरूरत है, परमात्मा तुम्हारी मदद करे। ईश्वर की दया और उनकी रहमत से वो काम हो जाया करते थे। हर शख्स खुश और प्रभु के प्रेम मग्न था। आप अक्सर फरमाया करते थे कि मेरी ये छोटी सी जमात बड़ी से बड़ी जमात का मुकाबला कर सकती है। यहाँ का तीन रोज का बैठा हुआ सत्संगी दूसरे नए सत्संगी का कल्ब जाकिर करा सकता है। अक्सर आप किसी एक से कह दिया करते थे कि तुम आज फला को सत्संग कराओ और उसको उसकी हिम्मत की सजा दिया करते थे कि और कहा करते थे कि तुम मेरी हिम्मत पर क्यों नहीं काम करते, समझ लिया करो तुम नहीं मैं तुम्हारी जगह काम करता हूँ। माता जी का प्रेम हर तरह से सराहनीय रहा। सबको बच्चों की तरह रखती और जरा सी भी चीज होती तो सब में बराबर बराबर बांट देती। हम सब लोग जो उस समय 10-20 आदमी थे इस ताक में रहते थे कि आप क्या चाहते हैं, किस चीज की आपको जरूरत है। खिदमत की फिक्र लगी रहती और दिल में एक अजीब गरज थी कि किसी तरह कुछ खिदमत कर सके। वजह नाकाबिले बयान है। इसी दरमियान में आपकी दो लड़कियों की शादी हुई। सब काम हम ही लोगों के सुपुर्द था। वो जमाना आपकी बहुत तंग दस्ती का था, फिर भी ईश्वर पर पूरा भरोसा करते हुए हर काम बड़ी अच्छी तरह से हो गया। आप हमेशा फरमाया करते थे कि मुझसे ज्यादा मेरी लड़कियों के लिए वर की तलाश की फिक्र मेरे पीराने उज्जाम को है। फरमाइए कितना विश्वास अपने पीरे उज्जाम पर था। यह वक्त आसानी और मोहब्बत से गुजारने के बाद जनाब के हुक्म से मैं और श्रीमान भाई साहब डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी आगरा डॉक्टरी की पढ़ाई करने चले गए। हम लोगों के बराबर जिक्र करने से डॉक्टर महेश्वर साहब और 3-4 साहबान और भी आगरा से फतेहगढ़ हजरत की खिदमत में आने लगे और सत्संगियों की तादाद भी कुछ ज्यादा हो गई। आपका ऐसा ख्याल हुआ कि हर साल एक जलसा रखा जाए और ऐसी छुट्टी में रखा जाए जब न हिंदुओं का त्योहार हो न मुसलमानों का, क्योंकि दोनों जनाब की दोनों जमात के लोग उनके शहदाई थे। चुनांचे सन 1921 में ईस्टर की छुट्टी में फतेहगढ़ में जलसा होने लगा और हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। इंतजाम के लिए हम 4-5 लड़के खास तौर पर रहते थे, कोई पानी भरता, कोई चौके में कुछ मदद करता, गरज सब मिलकर काम चलता रहता। हम कई लोग बिना किसी ख्याल के कि पढ़ाई का हर्जा होगा, ऐसे प्रेम में मस्त थे कि जितना मौका मिल जाता हाजिर खिदमत रहते। एक मर्तबा श्रीमान भाई साहब डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी ने मुझसे फरमाया कि भाई तुम में प्रेम का मादा कम है और प्रेम तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। दोबारा जब मैं फतेहगढ़ हाजिर खिदमत हुआ तो ये ख्याल हुआ कि वो कौन सी चीज़ है जो आपके लिए मैं कुर्बान नहीं कर सकता और प्रेम की निशानी क्या है। मैंने तो पहले ही दिन जिस रोज सन 1915 में कदमों में आपके कदमों में हाजिर हुआ था उसी रोज अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। बाकी और प्रेम क्या होता है मैं नहीं जानता, ये सब अपने दिल में ही सोच सोच कर आंसू भर लाया। आप उस समय कुछ लिख रहे थे, फौरन उठे और मेरा हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। यह उस प्रेम के आंसुओं का एवज का बदला था जिसने मुझको अपने प्रेम से सराबोर कर दिया था। जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ रहा था तो एक मर्तबा आपने इशारा किया था कि तुमको सत्संग में आते आते 2 या 3 साल हो गए, अब तुम्हारी खास तरीके से ख्याल रखा जाएगा, जब तुम सुबह आओगे तो बतलाएंगे। मैं सुबह इस उम्मीद में गया कि आज कुछ इरशाद होगा, लेकिन ना मैंने कुछ पूछने की हिम्मत की ना उन्होंने ही कुछ कहा, मैं वापस हो गया। सन 1921 में आपने एक रोज बुलाकर फरमाया, आओ बेटे 5 पैसे के बताशे ले आओ। मैं ले आया, आन अहाब ने हजरत किबला मौलवी फजल अहमद खान साहब रहमतुल्लाह का वसीला देकर अपने हाथ पर बैत किया। लफ्ज बैत से मतलब यह है कि जिसको बैत करते हैं जहाँ तक उसकी यानी शिष्य की इम्ताद योग्यता देखते हैं उसको अपनी रूहानी कुब्बत अता करके अपने से ऊपर के बुजुर्गों से ताल्लुक नस्बत या कनेक्शन अपनी कुब्बत इरादी यानी अपनी विल पावर के से सिलसिले के बुजुर्गों से करा देते हैं। इस सिलसिले में मैंने ये खास खसूसियत और खास नज़ाकत देखी कि अपनी ताकत से जितना हो सके उसने परमात्मा का प्रेम भर दिया और ऐसा प्रेम कि जिसका जन्म जन्मांतर तक बीच कभी खत्म न होने पाए।
तो बैत में आपका तो कुछ हुआ ही नहीं, उसी ने अपने कुब्बत इरादी से और उसी ने बुजुर्गों को लेकिन वो एक ऐसा बीज होता है जो खत्म नहीं होता। लेकिन ये अभ्यासी को प्रैक्टिस करके बराबर उसे प्रोडक्शन देना पड़ता। जैसे माली का काम होता है, उसने बीज लगा दिया, थोड़ी सी मेड़ बना दी, उसके बाद उसे प्रोटेक्ट भी करता रहता ताकि कोई जानवर ना खा ले या दुनिया ना खा ले। जब तक वो पेड़ अपने आप डिपेंडेंट नहीं, इस बीच में अगर उस पर दुनिया का असर हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, खाद पानी नहीं मिलेगा तो मुरझा जाएगा। तो उस पर बैत करने वाले की क्या है? अभ्यासी को एहसानमंद होना चाहिए कि तो उसने दया करके आपको अपने सिलसिले में दाखिल कर लिया और ईश्वर नाम का बीज था। आपके लाखों की दौलत छोड़ दी लड़के के ऊपर, जब तक वो उसका शक्ति उपयोग नहीं करेगा तब तक अपने आप या तो खत्म हो जाएगी या बर्बाद हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि दीक्षा ले ली हमारा काम खत्म। जबकि ऐसी बात नहीं, उसका काम तो शुरू हुआ है, तो अंत क्यों मान ले? जो शुरुआत है उसे हम और आप अंत मान ले, इससे बड़ी बेवकूफी किसकी? जैसे बीज सड़ जाएगा, पेड़ ना भी जमा करे, लेकिन जब भी आप देखेंगे कि खेत में फिर दूसरे बीज बोए जाते हैं, तो कुछ पुराने पौधे, चाहे वो अरहर के हो चाहे किसी को भी, तो वही बीज है जिन्हें खाद पानी मिलने पर फिर से चल। तो दीक्षा लेना अंत नहीं, दीक्षा लेना प्रारंभ है, और उसके साथ मेहनत और एहतियात आपको बरतनी है कि किस तरह हम उसे बचाए रहें, खाद पानी दें, ताकि वो पूर्ण दरख्त के रूप में।
ऐसा प्रेम कि जिसका जन्म जन्मांत तक बीज खत्म ना हो पाए, शिष्य को ख्याल भी नहीं कि क्या हो रहा है। गुरु की दयालुता का अंदाज लगाना भी मुश्किल है, गुरु कितना दयालु है। सन 1923 मई में जब हमारी माता जी का सांप काटने से अचानक स्वर्गवास हो गया, घबरा कर आपको तहरीर किया कि मैं बहुत परेशान हूँ। उस पर आपने बहुत शांति बख्श खत लिखा, जिससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। एक बार मैंने आपको लिखा कि अगर हुक्म हो तो मैं भी कस्बा भोगाऊं, जो हजरत की जान सकूनत किसी वक्त थी। वहाँ किबला हजरत मौलवी अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह सकूनत अदीस के उर्स में शामिल हों। आपने माता जी से कहा कि वहाँ ज्यादातर मुसलमान होंगे, ये जाकर क्या करेंगे? माता जी ने कहा, आपका साथ तो है, हर्ज क्या है? आपने लिखा, ऐसे मौकों पर काफी रूहानी फायदा हो जाता है, अगर मुमकिन हो चले आना। मैं बखुशी वहां पहुंच गया और उर्स शुरू हुआ। इत्तेफाक वहां एक बाबाजी के पैर पर गर्म देसी चावलों का उलट गया, वो बहुत परेशान था। मैंने एक दवा लगा दी, उसको एकदम आराम आ गया। वहां लोगों ने इसका जिक्र भरे मजमे में किया। आप मुस्कराए और मेरी तरफ बड़ी मोहब्बत से देखा। यह वही उर्स था जिसमें जनाब किबला लाला जी महाराज ने अवतार समझाया था, और लोग कह उठे थे कि ना मालूम हमारे किबला मौलवी फजल अहमद खान साहब रहमतुल्लाह ने आप में क्या भर दिया है। इस उर्स में कई बहुत उच्च कोटि के अभ्यासी भी आए थे, मेरी शिरकत के लिए इजाजत देना उनकी मोहब्बत और रहमत थी। एक मर्तबा सालाना जलसे में आदमी और औरतें बहुत ज्यादा हो गए, नौकर नहीं मिले। हम 3-4 लड़के काम में भिड़ गए, सबको नहलाया धुलाया, पानी भरा। माता जी और बहने से कहा, तुम दाल वगैरह बनाओ, हम आटा गूंथ देंगे, और आटा गूंथने लगे। इतने में आप अंदर आए। माता जी ने हंसकर कहा, आज आटा डॉक्टरी तरीके से गूंथ रहा है। आपने उसके तुरंत बाद मुझे अपने पास बुलाया, खैर व आफियत पूछते रहे और कहा कि तुमने हमको लिखा था कि तुमको प्लेग के केसेस देखने पड़ते हैं और तुम्हें उस वक्त बड़ा डर लगता है। फरमाया, जाते वक्त मुझसे तावीज लिखवा लेना। मजमा बहुत था और इतना वक्त भी नहीं था कि इसका जिक्र करूं। सुबह सत्संग के बाद जनाब ने पढ़ना शुरू किया और सब पर एक निहायत महवियत का आलम जारी हो गया। एक और भाई उठे जिन्हें 9 बजे गाड़ी से जाना था, उसी गाड़ी से मुझे भी जाना था। आपने फरमाया, देखो, उनका ये देखो कहना था कि मैं सहन कर फिर बैठ गया कि कुछ इस वक्त हमारे जाने को न जाने मुनासिब समझ रहे हैं या नहीं। इरशाद हुआ कि देखो, जब तुम प्लेग के मरीजों को देखने जाओ तो मैं समझ लिया करो कि वहाँ तुम नहीं हो और न तुम्हारी हस्ती ही काम कर रही है। जो हस्ती तुम्हारी जगह काम कर रही हो कर रही है उसको कोई इस तरह की तकलीफ नहीं हो सकती। इशारा यह था कि तुम अपने को मुझ में फना कर दिया करो, उस समय फनाइत की हालत में जो तुम काम करोगे उससे तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसके एक रोज पहले आपने दारू शरीफ का जाप करने के लिए हुक्म दिया था और अपने दस्ते मुबारक से कुल हिंदी में लिख कर दिया था। यह पहला शगल था जो जनाब ने फरमाया था, वरना कुछ नसीहतों के लिए दिल में एक तड़पती रहती थी और आप जनाब प्रेम ही प्रेम देते थे। कोई शगल नहीं, कोई अभ्यास नहीं और कुछ नहीं। एक मर्तबा आप जनाब जौनपुर अपने एक अजीज की शादी में तशरीफ ले गए। मुझको लिखा मैं तुम्हारे पास दिलदार नगर आऊंगा। मैं होली के मौके पर मकान जाने को था। जनाब की आमद का जब खत मिला वह मसर्रत का वायस हुआ। मैंने अपने घर जाने का प्रोग्राम तब्दील कर दिया और आपको तार दिया कि मैं दिलदार नगर ही मिलूंगा। जो तारीख आने की थी उस पर मैं 2 बजे
उसमें भी एक चीज थी, वो पहली बार दर्शा जब बाबा जी गाँव से बाबा के यहाँ से अपनी पत्नी को ले गए। होली का त्योहार उसको बहुत बड़ा माना जाता, हमारे यहाँ सब परिवार के लोग इकट्ठा हुए और जब आपकी आमद की खबर हुई तो आपने बाबा को चिट्ठी लिखी। बाबा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके बाद उनके दिमाग में ये स्पष्ट हो गया कि लाला जी जो बात कहते हैं वो इसी को ये मानते हैं और वैसे ही करते हैं। फिर उनने उनके काम में कभी इंटरफेयर करने की कोशिश ही नहीं। आम आदमी इस वक्त का आदमी हो सकता है उसे मामूली, उस वक्त के कम्बाइंड परिवार में पहली मरतब पत्नी को ले जाना दुनिया भर के गांव वालों ने कहा साहब, लेकिन आपने कोई चिंता किसी को। लाला जी महाराज साहब का पत्र आते ही आपने सब प्रोग्राम, ये प्रेम आजकल उन्होंने कहा अच्छा साहब आ रहे हैं हम इंतजाम कर देते हैं, तो इंतजाम के लिए तो वो नहीं आ रहे थे या तो वो आ ही रहे थे आपसे मिलने के लिए, तब फिर कहा
जो तारीख आने की थी उस पर मैं 2 बजे रात को गाड़ी पर देखने गया, आप तशरीफ नहीं लाए। अगले रोज फिर देखने गया, आप फिर भी नहीं आए। मुझे यह ख्याल हुआ कि जनाब ने प्रोग्राम तब्दील कर दिया होगा। तीसरे रोज मैं गाड़ी पर नहीं गया। तीसरे रोज आप 2 बजे रात की गाड़ी से उतरकर सीधे मकान पर पहुंचे। पहली आवाज पर मैं न जाग सका, पर दूसरी आवाज पर मैंने कहा आया। मैंने दरवाजा खोला, पैर छू कर उन्हें बिठा कर मैं फौरन अंदर चला गया। मेरा जिस्म उस समय नापाक था, उस वक्त यही मुनासिब समझा कि दरवाजा फौरन खोल दूं और पैर छू कर अपना जिस्म साफ करूं। ऐसा ही करके फिर मैं उनके पास बैठा। कुछ रात की जागे थे, उनकी भी आंख लग गई। जब आंखें खोली मैंने पूछा कि सर्दी के दिन रात के 2 बजे और इस गाड़ी से दिलदार नगर की सवारी भी ज्यादा नहीं उतरती है, आपको मकान मिलने में बड़ी तकलीफ हुई होगी। इरशाद फरमाया मैंने पहली आवाज इसी दरवाजे पर आकर दी और ना रास्ता ही किसी से पूछा, सीधा चला आया। ऐसा मालूम होता था कि मैं यहाँ कई मर्तबा आया हूँ, कोई नई जगह मेरे लिए नहीं मालूम हुई। नोट, मुमकिन है कि साहबान को इसके समझ में कुछ दिक्कत पड़े। बात इतनी कठिन नहीं, जिस घर में ईश्वर का प्रभु का जिक्र हो, प्रभु की दया वहाँ ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। चूंकि रोजाना ही उनका वहाँ जिक्र होता था, वहाँ उनकी खुशबू बस गई थी। फिर संत सदगुरु त्रिकालदर्शी खुद होते हैं, यह बात उनके लिए बहुत मामूली सी बात थी। इस सिलसिले के बुजुर्ग में इस किस्म के कश्र की नजाकत और खसूसियत हमेशा से ही रही है।
देखिए इसमें भी एक होता है जिसका आप ताल करा के बराबर करते रहते, उसका औरा चारों तरफ बनता चला जाए। पहले छोटा औरा बनता है, बाद में बड़ा औरा बनता है, और जब उसी सिलसिले का कोई उसी धर्मकाल का आदमी है तो वो उसको अट्रैक्ट कर। हमने अपने गुरुदेव के भी साथ देखा, जब हमारा पैर फ्रैक्चर हुआ तो सीधे बगैर किसी के अकेले ही जिस वार्ड में स्टूडेंट में हम भर्ती थे सीधे हमारी चारपाई पर पहले ख्याल हुआ कि ये यहीं के स्टूडेंट थे। बाद में हमने ख्याल आया कि स्टूडेंट वार्ड तो जो हम लोग आए हैं तब बना है। हमने उनसे पूछा कि ताऊ जी ये आपके दान बोले नहीं बेटे हम लोग के टाइम में स्कूल था उधर ही का हिस्सा था, ये सब नया बना, किसी से नहीं पूछा कहाँ एडमिट है कहाँ। तो जिसका जितना जबरदस्त तौरा बनता चला जाएगा उतना ही जो उसका ख्याल करेगा उसका अट्रैक्शन। ये और लोगों के साथ भी हमने देखा, इसलिए दूसरों के लिए चमत्कार ये हो सकता है, ये संतों के लिए मामूली सी बात है।
इस सिलसिले के बुजुर्गों में इस किस्म के कष्ट की नजाकत और खुशियत हमेशा ही से रही है। आप अक्सर फरमाया करते थे कि हमारे पीर मुर्शिद मौलाना फजल अहमद खान साहब रहमतुल्लाह जब कभी किसी जगह जाते थे तो जमीन देखकर कह दिया करते थे कि फला जगह बैठकर फला साहब ने अभ्यास करते रहे होंगे। गौर कीजिए किस आला दर्जे का कश्फ था। आपने बड़ी दया करके दो रोज कयाम फरमाया। जिस बारात में आप तशरीफ ले गए थे कुछ खाने पीने की तकलीफ सी रही थी। आपने कहा रोटियां बहुत मोटी मोटी थी और मेरा हाजमा कमजोर हो गया है। मैं भी घबराया कि कहीं मेरे यहाँ की रोटियां आपको तकलीफ न दें। मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि जितना बेहतर से बेहतर और सूक्ष्म भोजन बना सकती हो बनाना। अव्वल तो वो वैसे ही बहुत अच्छा खाना पकाती थी, फिर खुशूसियत के साथ ख्याल करके खाना बनाया। जब खाना परोसा गया मैं बहुत घबराया। आपने फरमाया कि ऐसा खाना अगर हमको मिलता रहे तो हमारा पेट बहुत ठीक रहे। मुझे बहुत खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई कि जनाब को खाना आपके तबीयत के मुताबिक मिल गया। दौरे कयाम फरमाया, अभी यहाँ दूर दूर तक कोई भी इस विद्या का अधिकारी नहीं दिखाई देता। मैं नाम का असर जमीन में भर दे रहा हूँ। ईश्वर की दया है कि उसी दिलदार नगर में आज कई साहबान इस सत्संग में शामिल हैं, या उनका उस जमीन पर ठहरने और बोलने का असर था। उसी दौरान एक और वाक्या है जो उन्हीं पूज्य बाबा जी के शब्दों में मैं लिखकर आपको प्रेषित कर रहा हूँ। मैं दिलदार नगर स्टेशन पर कुछ काम से गया था, उसी डाक से पूज्य लाला जी आपका खत आया था कि लड़की की शादी फला तारीख को है। स्टेशन पर ही ये ख्याल आया कि हम तो आराम से रह रहे हैं और आप पर रुपए नहीं है, दस्तावेज लेकर रुपए लेना पड़ेगा। हमारी नौकरी बेकार है जो आपकी कुछ खिदमत न कर पाए। ख्याल में इतनी पुख्तगी आई कि स्टेशन से सीधा घर आया, पासबुक लेकर एक या दो रुपया किताब में छोड़ा, बाकी उसी वक्त जनाब को रवाना कर दिया। आपका बहुत बहुत मोहब्बत से भरा खत उसके जवाब में आया जो मैंने आज तक बतौर यादगार अमानत रख रखा है। आपने बताया है कि इस रास्ते में अक्सर खतरात आते रहते हैं, इस किस्म का खतरा खतरा रहमानी होता है। अगर उस वक्त ये ख्याल पैदा हो जाता कि इस वक्त ना भेजें बाद में भेज देंगे या कुछ और ख्याल वगैरह वगैरह, तो ये खतरा शैतानी कहलाता।
देखिए उसका तीन ऑल्टरनेटिव थे, अच्छा साहब जरूरत होगी तो पत्र आएगा जो आम लोग सोचते, दूसरा ये चलो कुछ पैसे भेज, और सबसे बेस्ट यही था कि जो भी अमाउंट हो मैक्सिमम भेज, और वही आपने किया। जिस शख्स की अच्छी थिंकिंग नहीं होती वो फर्स्ट तरीका अपनाता कि लेटेस्ट रेट जब चिट्ठी आएगी तब भेज दिया जाए। जो कभी कभी ख्याल करते उनको ये होता चलो भाई थोड़ा पैसा भेज दिया, लेकिन जब आप हमेशा अच्छाई की तरफ काल करते रहेंगे तो ये हुआ पूरा पैसा भेज दो, और खाली उनने दो रुपए या पाँच रुपए जो भी जरूरत उस वक्त का नियम हो उसे छोड़ दो। इसी को आप कहते थे बाबूजी महाराज ऑलवेज थिंक गुड, फिर डू गुड भी होना चाहिए। ये तो सोचा उनने वैसे ही किया तो तुम अपने आप अच्छे बन जाओ।
मैं गाजीपुर से जुलाई सन 1928 में लखनऊ आ गया। बीमारी की वजह से बहुत कमजोर था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारे छोटे बहनोई को तपेदिक हो गई। मैंने आपको बहुत परेशानी से सब हालत अर्ज की। आप खुद बीमार थे लेकिन उसी बीमारी के हालत में आप बाबू प्रेम नारायण दलेला जी को देखने के लिए तशरीफ लाए। उस रोज सुबह से ही मुझको दस्त व कैश शुरू हो गए और जो हमारे तीन साथी और थे डॉक्टर थे उन्होंने कहा ये तो हैजा सा मालूम होता है। मैंने बहुत हिम्मत बांधी और कहा कि मुझको कुछ नहीं हुआ है, आप लोग घबराए नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। इतने में क्या देखते हैं कि आप लाला श्री महाराज खुद फतेहगढ़ से तशरीफ ले आए और आवाज दी। डॉक्टर लालता प्रसाद जी फतेहगढ़ के थे, उन्होंने आपको रिसीव किया, स्वागत किया। मैं तो उठ नहीं सका, इस हद की कमजोरी थी। डॉक्टर लालता प्रसाद ने पूछा कि आपको मकान ढूंढने में बहुत तकलीफ हुई होगी। आपने फरमाया कि मकान पर आकर ही आवाज दी, जैसा मेरा कई मर्तबा का देखा हुआ हो यह दूसरी मर्तबा ऐसा वाकया हुआ है। एक बार दिलदार नगर में ऐसा ही हुआ था जिसका जिक्र मैंने पहले किया है। आप मेरे पास तशरीफ लाए और बड़ी शफक्कत से फरमाया कि देखने के लिए तो हम बाबू प्रेम नारायण को आए थे, तुम भी बीमार निकले। मैं उसी वक्त से बिल्कुल ठीक हो गया और खूब चलने फिरने लगा। लोगों को ताज्जुब हुआ कि 10 मिनट पहले तो तुम इस कदर बीमार थे कि उठ नहीं सकते थे, अब तुम्हारी बीमारी कहाँ चली गई। शाम को जब आप टहलने जाने लगे तो मैंने भी साथ जाने की इच्छा की। फरमाया तुम बहुत कमजोर हो, हम क्योंकि जब बात का इलाज करते हैं इस वजह से बहुत तेज चलेंगे, तुम इतना तेज नहीं चल सकोगे, इसलिए तुम वापस मकान पर चले जाओ। जब शाम को टहलकर वापस तशरीफ लाए तो एक साहब बाबू बटकनाथ जो उस समय लॉ के स्टूडेंट थे श्रीमान डॉक्टर चतुर्भुज सहाय साहब से ताल्लुक रखते थे। मैंने उनसे जनाब कियामत का जिक्र किया, चरणों के दर्शन को आए। मैं शर्म की वजह से पुजलाला कुछ नहीं कह सका था। बाबू बटकनाथ जी से कहा कि आप हजरत किबला से अर्ज कर दे कि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ फल खा लें। फल सुबह ही मैंने अमीनाबाद से मंगवा लिए थे। बाबू बटकनाथ जी ने 2-3 मर्तबे कहा, फरमाने लगे थोड़ी देर में खा लेंगे। जब वे चले गए तो मैंने हिम्मत बांधी और कहा कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, परहेजी खाना जैसा आप खाते हैं तैयार हो रहा है, यानी बिना छने आटे की रोटी, बिना मसाले का की सब्जी वगैरह। आपने फौरन फल खाना शुरू कर दिया और फरमाया कि ये फल तो तुमने ही मंगवाए थे। मैंने अर्ज किया जी हाँ, मुस्कराए और बोले मैं तो पहले ही समझ गया था। शाम हुई, डॉक्टर छोटेलाल जी जो मेरे दूसरे साथी थे आ गए। कुछ देर बाद सब हट गए। फरमाया हेल्थ ऑफिसरी के इम्तहान में तो सब लड़के पास ही हो जाते होंगे। मैंने अर्ज किया पिछली साल तो रिजल्ट 50% भी नहीं था। फरमाया खुद जहन या बेवकूफ फेल होते होंगे, आपके फरमाने की गरज यह थी कि तुम पास जरूर हो जाओगे। सुबह हुई तो श्रीमान भाई साहब बाबू लाल बहादुर साहब जो महकमा कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स में मुलाजिम थे और जो शाम से ही आ गए थे, कहने लगे और इसरार किया कि आप मेरे मकान पर तशरीफ ले चले क्योंकि डॉक्टर शाह तो कॉलेज चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत कल काफ़ी ख़राब थी और मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। आप बोले अच्छा वहीं चलते हैं। मैं टांगा ले आया और रवाना होने लगे। मैंने अर्ज किया कि तब तक मैं भी कॉलेज चला चलूँ, हाजिरी हो जाएगी। कहा अच्छा ठीक है। भाई साहब लाल बहादुर साहब ने फरमाया अभी तो तुम कह रहे थे कि कॉलेज नहीं जाऊँगा, बजाय इसके कि मैं कुछ जवाब देता, आपने कह दिया जो मेरे दिल में था कि मेरे रुकने की वजह से रुक रहे थे। अब हम लोग वहाँ चल रहे हैं तो ये कॉलेज भी हो आएंगे, हाजिरी दे आवेंगे। भाई साहब इस मोहब्बताना रवैया को देख कर हंसे। सब रवाना हुए, जहाँ भाई साहब रहते थे वहाँ उनको पहुँचा कर मैं कॉलेज चला गया और हाजिरी देकर फिर आपकी खिदमत में शाम को पहुँच गया। रात को वहाँ से चला आया, सुबह को फिर मुँह अंधेरे वहीं पहुँच गया। फासला करीब 2.5 मील था। भाई साहब अभी उठकर दाढ़ी बना रहे थे, आपने फरमाया कि तुम 2.5 मील पैदल चलकर आ गए और जो हमको अपने घर में ठहराए हैं वे अभी तक तैयार नहीं हैं। खैर फिर वे मुझे देखकर जल्दी से तैयार हुए। थोड़ी देर तक आंतरिक सत्संग हुआ, बाद को आपने फरमाया कि अब हम वापस फतेहगढ़ जाएंगे। मैं और हजरत किबला दोनों वहाँ से स्टेशन को रवाना हुए। जैसे ही घर से निकले फलों की ढेरियाँ लगी हुई थी। फरमाया ये साहब कल से यही कह रहे थे कि यहाँ फल नहीं मिलते, अमीनाबाद जाना पड़ता है, यहाँ तो फल बहुतेरे मिल रहे हैं। यह चीज़ मुझको दिल में बड़ी तकलीफ दे गई और बड़ी फील हुई कि जब उनकी खुराक फल ही थे उस वक्त, तो उस रोज़ जो उसको उनको उस रोज़ नहीं मिले। मैंने अमीना जाकर काफ़ी फल और परवल जो सब्जी में इस्तेमाल होते हैं खरीद कर आपके साथ रख दिए। जब आप गाड़ी पर सवार हुए मेरा जी भर आया, आपने बहुत आशीर्वाद दिया। गाड़ी रवाना हो गई, कुछ देर सन्नाटा हो गया, तबीयत कहीं नहीं लग रही थी। खैर सन 1928 गुजरा और सन 1929 शुरू हुआ। मेरा जिस्म बहुत गिर गया था क्योंकि बीमारी की ही हालत में पढ़ने गया था। उधर पढ़ाई में भी मेहनत बहुत पड़ी। अप्रैल में भंडारा पड़ा, 4 अप्रैल को मैं भंडारे में शिरकत कर रहा था। रात को 11 बजे गाड़ी लखनऊ को मिलती थी जो सुबह लखनऊ पहुंचा देती थी। मैं और भाई साहब बाबू लाल बहादुर साहब ने आपसे इजाज़त चाही और मेरे लिए भी इजाज़त मांगी। फरमाया तुम भी जा रहे हो? जिस प्रेम की नज़र से आपने मुझे देखा वह आज तक मेरे जहन पर तारी हो जाता है। मैं खामोश रहा, कुछ न बोल पाया। बाबू लाल बहादुर साहब ने ही कहा इनका परसों सुबह फाइनल इम्तहान है। फरमाया परसों? मैं कुछ ना बोल सकता, मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दिए। हुक्म हुआ जाओ, पैर छूकर हम लोग रवाना हुए। रास्ते भर आपकी वही आवाज़ क्या तुम भी जा रहे हो गूंजती रही। यहाँ 5 अप्रैल की सुबह को जब पहुँचे तो लड़कों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, कहा कल सुबह इम्तहान है और आज जनाब तशरीफ लाए हैं। मेरा नाम तो फेल वाले लड़कों में समझ लिया गया। इम्तहान 2 हिस्सों में होता था, पहले हिस्से में जो पास हो जाता था वही दूसरे में बैठ सकता था, वरना नहीं। ईश्वर की दया और आपकी मेहरबानी से मैं पहले हिस्से में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। लड़कों को बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने खुश होकर फौरन आपको इत्तलाई खत लिखा, मैं पहले हिस्से में पास हो गया हूँ, दूसरे पार्ट का इम्तहान 2-3 रोज में शुरू होगा। जवाब आया ईश्वर तुमको दूसरे पार्ट में भी पास कर दे। ईश्वर ने ऐसी दया की 22 में से सिर्फ 9 लड़के पास हुए, उनमें मैं भी था और मेरी चौथी पोजीशन थी। यह सब कुछ नहीं आपके ही आशीर्वाद का नेक फल था। हेल्थ ऑफिसरी का इम्तहान पास करके मैं फिर गाजीपुर वापस चला गया। इसी अरसे में सेठ के मामा बद्री प्रसाद की शादी हुई, गालिबन मई 1929 थी। मैं गाजीपुर से ही बारात में शामिल होने के लिए आया था। सफर का आगाज ही बड़ी नहुसत से हुआ, बमुश्किल तमाम जगत पहुंचा और वहां से सब लोग बारात में साथ गए। मेरे पास काफ़ी कपड़े और सामान अपना था, बारात का जेवर और रुपए भी मेरे पास ही था। गरज वहां के लोगों ने ताड़ लिया कि बारात में यही खास आदमी हैं। 2-4 चौकीदार, 1 सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही उसी गांव के खास तौर पर बारात की निगहबानी के लिए तैनात थे। लेकिन रात को चोरों ने मेरा सब टेंट इस होशियारी से काट दिया और 15 मिनट के अंदर सारा सामान चोरी चला गया। सुबह जब आकर बिरादर अजीज गंगा दीन गजल खवानी के लिए मेरी किताब मांगने लगे तो मैंने उनसे कहा कि मेरी किताब मेरे बक्स में है। उन्होंने कहा बक्स में है ही नहीं। मैं भड़बड़ा कर उठा और देखा कि कोई सामान मेरा बाकी नहीं है, सब चोरी हो गई थी। मैं सिर्फ एक बनियान और एक पुरानी धोती पहने रह गया। बहुत बड़ा शौक लगा। ये ख्याल हुआ कि जितने लोग पूजा पाठ करने वाले होते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं और पूजा पाठ मामूली दुनियादार के लिए कोई कारामद शय नहीं है।
तो ये एक नेगेटिव थिंकिंग है सबके किसी ना किसी जीवन के वक्त में। तो फौरन आदमी हमेशा ईश्वर को दोष देता, अपनी किस्मत को दोष, समय और उसका कोई नहीं, सबके साथ भी। और जो अपने गुरु पर भरोसा कर लेता है वही इससे निकल। ये टेस्ट भी होता है, इसलिए हमेशा थिंकिंग बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये किस सब चीजें एक मरते सूल से छूटती है, मुझे सूक्ष्म से छूटती है, ये माया सूक्ष्म से छूट रही, इसलिए बड़ी मुश्किल से ये ख्याल छूटता है। सूक्ष्म के छूटने का मतलब है उस ख्याल का जो बीज है वही खत्म होता है। तो जो जन्म जन्मांत की चीजें हैं उनको छोड़ने में हर एक को परेशानी।
वो मैं वापसी भाटेगढ़ होता हुआ गुरुदेव के दर्शन करता हुआ वापस गाजीपुर गया, लेकिन ये ख्याल बहुत जोर पकड़ता गया और इतनी मजबूती से जड़ पकड़ी कि इसका निकलना मुश्किल हो गया। यह गालिबन जून या जुलाई का माह था। पूजा से बराबर तबीयत हट रही थी, दुनिया का रुझान बहुत था और इसके साथ साथ बहुत ही बदख्याली होने लगी। इसी अरसे में मेरा तबादला बहैसियत हेल्थ ऑफिसर बुलंदशहर हो गया। ख्यालात फिर भी वही रहे, बल्कि बदख्याली और काम से ख्यालात बहुत होने लगे। हालत दिन पर दिन बिगड़ गड़बड़ाती रही। घबरा घबरा कर बराबर खत लिखता रहा। एक रोज तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैंने खत लिखा और दूसरे रोज फतेहगढ़ को रवाना हो गया। रात के 2 बजे गाड़ी फतेहगढ़ पहुंची। मैं बाहरी बरामदे में मारे शर्म के जो तख्त पड़ा था उस पर बैठ गया। अंधेरे में मैं देख न पाया, उस पर बहुत मिट्टी पड़ी थी क्योंकि घर में कुछ बन रहा था। आप आहट पाकर फौरन उठ पड़े, कौन है? मैंने कहा मैं श्यामलाल। फरमाया तुम बाहर क्यों बैठ गए, यहाँ चले आओ और आराम से सो जाओ, हम जाग रहे हैं। तुम्हारा खत भी आज हमको मिल गया था। सुबह उठकर जो मैंने सड़क पर देखा तो मेरे खत को इस तरह से फाड़ा था कि कोई लाख कोशिश जोड़ने की करे तो जुड़ नहीं सकता था। आप कभी एक की बात या भेद को दूसरे से जिक्र भी नहीं किया करते थे। आपने कभी एक अभ्यासी की बाबत दूसरे अभ्यासी से कोई जिक्र ही नहीं किया, चाहे वह कितने ही दोस्त क्यों न हो। 2-3 रोज कर रह कर चला आया। हालत वहाँ रहने पर कुछ सुकून पर जरूर आई, लेकिन वहाँ से हटने पर ख्यालात की पूजा पाठ करने वालों पर मुसीबत आती है, फिर परेशान करने लगे। ख्यालात दिन ब दिन दुनियावी होते जा रहे थे और काम शक्ति जो कभी इस वेग से नहीं उभरी कि वो भी उभर रही थी। और हर वक्त यह हालत थी कि या तो दुनिया साथ थी या काम शक्ति। दुखी होकर मैंने बहुत नम्रता से फिर खत लिखा कि मेरी हालत यह है और जब मैं बिल्कुल डूब गया तो आपकी मदद पहुंची भी तो क्या होगा, मैं तो फिर डूब ही जाऊंगा। आपने हजरत किबला चाचा जी महाराज से फरमाया कि तुम फौरन जाओ और 15 रोज श्यामलाल के पास ठहरो ताकि उसकी हालत संभले। तुरंत इबाद पहुंची और मैं संभल गया, यह उनकी दया थी। इसी बीच में एक रोज मैं दौरे में था, शाम को वक्त पूजा में बैठा। अजीबो गरीब हालत थी, शाम से बैठा हुआ रात को सर्दी के दिनों में 2 बज गए, कोई खबर तक नहीं रही और डर की वजह से नौकर ने भी नहीं जगाया। इस बेखबरी की हालत में क्या देखता हूँ कि पहले हजरत किबला पर मौलवी फजल अहमद खान साहब रहमतुल्लाह ने वहीं पर, फिर हजरत किबला मौलवी अहमद खली साहब रहमतुल्लाह ने अपने अपने हाथ पर मुझे बैत फरमाई।
क्योंकि इसमें समझ लें जब आपका सूक्ष्म साफ होता है उस रोज आपकी निस्पत अपने सिलसिले के बुद्धों को हो सकती है। जब तक हमारा स्कूल में रहता है तब तक हमारा कनेक्शन अपने गुरु से ही होता है, और जिस वो सूक्ष्म साफ होगा, अब आपका सूक्ष्म साफ हो गया था तो पहले आपने देखा मौलवी फजल अहमद साहब, फिर मौलवी अहमद सलीम साहब दीक्षा थी। जब तक आदमी का सूक्ष्म नहीं साफ होता तब तक वो हमेशा स्थूल के मुकाम पर रहता है और सूक्ष्म की सफाई का काम करता है। ये एक ख्याल था, अगर दो काल भी हो गए मतलब वो है जीवन होता। एक अहम बात ये है कि परम पूज्य चाचा जी महाराज साहब का दाल रोटी उनकी रोज की इनकम से चलती, लाला जी महाराज साहब की चिट्ठी पाते ही उनके हुक्म की तामील में मैंने नहीं सोचा कि 15 दिन हमारे घर का क्या बन रहा है। फिर वो भी अपने या अपने बच्चों की भलाई के लिए नहीं, दूसरे मनुष्यों की भलाई। यही निस्वार्थ प्रेम है कि हर एक का, जिसको हम लोग कहते हैं हर एक का भला करो, सबका भला करो। और चलते पति यही बता दिया कि खाली तुम नहीं, इससे पहले भी हमको 6 जगह ऐसी जगह ज्यादा पड़ा जा के हमने सूक्ष्म की सफाई। खाली यही किताब पढ़ लें तो वेल सफिशिएंट है किसी चीज के आपको किया ना उसकी जरूरत। फिर कोशिश करें कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते।
मैं चौंक कर उठ बैठा और सोचने लगा कि मैं तो पहले से ही बैठ हूँ और खुद हजरत किबला लाला जी महाराज ने मुझको अपने दस्ते मुबारक पर बैठ किया है, यह वैद कैसी। दो चार और श्रीमान भाई साहब, दो चार दोस्तों और श्रीमान भाई साहब डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी साहब थे जिनको कुछ ज्यादा मजीद वाकियत थी। दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि पीराने उज्जाम हमेशा ही हाथ पकड़ लेते हैं और असली बैत भी यही है। मैं खामोश हो गया। मेरा तजुर्बा खुद भी बात को ये हुआ कि पुराने इज्जाम हर वक्त साया की तरह अपने शिष्यों के साथ घूमते हैं और हर जगह मदद करते हैं। आपने भी मुझको एक खत में यही लिखा है। खत मिल गया तो उसको असली नक उसको उसकी असल नकल इसमें शामिल कर दूंगा। फरमाया कि यह माया का जबरदस्त हमला था और अगर पीराने उस जाम से बकायदा नस्बत कम होती तो मामला बिगड़ जाता और परेशानी में पड़ जाते। बुलंदशहर में हम दो चार आदमी आपस में मिलते जुलते रहे, अच्छा वक्त गुजरने लगा। प्रेम और उत्साह के साथ परमात्मा का काम चलता रहा। सन 1930 में आपको जिगर की तकलीफ रहने लगी, आंखों में हल्का पीलापन रहने लगा, भूख बहुत कम लगने लगी। मेरा ख्याल है कि यह तकलीफ सन 1928 से ही चल रही थी, शुरू में पता नहीं चला। आपको अंग्रेजी इलाज पर एतकाद नहीं था बल्कि यूनानी और आयुर्वेदिक और उसके बाद नेचुरलपैथी और होम्योपैथी पर ज़्यादा भरोसा था। एक मर्तबा मैंने कुछ यूनानी किताबें पढ़ने के लिए मंगवाई क्योंकि मुझको खुद यूनानी इलाज ज़्यादा माफिक पड़ता था। मैं यूनानी किताबों को पढ़ना भी ज़्यादा पसंद करता था। आपको मैंने वह किताबें दिखाई, बहुत खुश हुए, फरमाया कितना अच्छा मजमून हर बीमारी पर लिखा है। दवाइयाँ यूनानी इलाज में अक्सर हैं, इसमें प्राकृतिक गुण हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इस्तेमाल मुनक्का, यह मुनक्का दवा की दवा है और खुराक की खुराक। दूसरी पैथी में इलाज तो बहुत अच्छा है और नई तहकीकात भी बहुत हैं, मगर उसमें भी ये चीज़ होती या शामिल कर ली जाती तो एलोपैथी उससे भी ज़्यादा अच्छी साबित होती और मुफीद बाज औकात पड़ जाती। गालिबन 1930 था जब आज जनाब को बदसिला बीमारी हमशीरा अजीजा कमला जी के सिकंदराबाद रहना पड़ा। ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हमशीरा प्रेमा जी की लड़की भी बीमार हो गई। प्रेमा जी की लड़की को मेरे पास बुलंदशहर छोड़ा और हमशीरा कमला जी को सिकंदराबाद रखा और खुद भी मैं माता जी के सिकंदराबाद इलाज और तीमारदारी के लिए रहे। एक दो साहबान और भी आपके साथ रुके थे। इसी दौरान में मैं एक रोज सुबह ही उठकर गुलावटी दौरे पर जाने के लिए घर से निकला। बुलंदशहर से 7 बजे गाड़ी गुलावटी जाती थी। खाना वगैरह लेकर मैं अपने अर्जली के जा रहा था, तभी रास्ते में हमारे डीएमओ एच डॉक्टर गोमती प्रसाद सक्सेना साहब खड़े हुए थे। बोले, श्यामलाल तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने अर्ज किया कि मैं तो गुलावटी दौरे पर जा रहा हूँ। कहने लगे, आप वहाँ ना जाइए, मेरी लड़की को रात में बड़ी तकलीफ रही है, मैं उसको किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर को दिखलाना चाहता हूँ। हम उसको लेकर दिल्ली चल दिए। जब सिकंदराबाद आया तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मैं चाहता हूँ कि सिकंदराबाद के सैनिटरी इंस्पेक्टर को भी साथ ले लूँ, मैं अभी जाकर उनको ले आता हूँ। दूसरे मैं एक और साहब से 2-4 होम्योपैथ दिल्ली वालों के नाम भी दरियाफ्त कर लूँगा ताकि लड़की को दिखलाने में मदद मिल जाए, क्योंकि मैं खुद किसी होम्योपैथ को नहीं जानता हूँ। इस तरह मैं उनकी मोटर से उतरकर तुरंत श्रीमान भाई साहब डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी साहब के यहाँ गया। मालूम हुआ कि कल रात से हमशीरा कमला जी बहुत सख्त बीमार हैं और हालत बहुत ख़राब है। मैं फौरन उनको देखने ऊपर छत पर चला गया। माता जी ने आंसू भरे लफ्जों में कहा, कमला तुम कहती थी ना कि श्यामलाल भैया नहीं आए। देखो वे भी आ गए। हालत नाजुक थी पर वो होश आवाश में थी। नमस्ते हुई। यह ऐसा समय था कि जनाब की तबीयत का रुझान जिस बात पर हो जाता था वो बात हो जाती थी। आपको मंजूर हुआ कि मैं अजीजा कमला जी के आखिरी वक्त पर उनके पास रहूं और मैं पहुंच गया। कहां मैं दौरे